चले आज के आखिरी क्लास शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त नहीं, आज तो सेकंड लास्ट क्लास, सॉरी। इसके बाद फलसफुल अंबिया की क्लास होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, ज़ालिका लिमन خشي ربه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. वैसे तो नजीब भाई काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हजरत जी का जो है वो आखिरी लेक्चर या आखिरी क्लास जो है आप ले लीजिए। तो हमने उनसे कहा कि भैया हजरत जी के बारे में आप लोगों को जो सुनने को मिल रहा है नजीब भाई के अपने जुबान से, और उसके अलावा माशाल्लाह दूसरे अंकल्स ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें पिछली क्लास में बताई, तो अब मैं उसके ऊपर मज़ीद क्या ऐड करूँ। सुनते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, किसी न किसी बहाने से, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, ये आज आखिरी क्लास थी फिर उसकी, मुस्लिम हीरोज़, निशाने राह, हमारे निशाने राह, यानी हमारे जो राह होनी चाहिए उसके ऊपर जो मौजूद हमारे माइलस्टोन्स हैं या जो निशान हैं, साइंस हैं, तो उन हजरात के ऊपर जो हमारी ये क्लास चल रही थी, जो कि माशाल्लाह 2 साल तो हो गए होंगे कम से कम, उसको शुरू हुए हुए 3 साल हो गए जी, 3 साल से कुछ ज़्यादा शायद अरसा हुआ ये चीज़, ये क्लास जो है वो चल रही थी। गालिबन ये सैटरडे की क्लासेस में से दूसरी क्लास थी, क्योंकि पहली जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास थी, और वो सिर्फ वही क्लास हुआ करती थी सैटरडे को हफ्ते के दिन। और फिर उसके बाद दूसरा सिलसिला जो शुरू हुआ वो ये निशान राह वाला सिलसिला शुरू हुआ। फिर तीस है,
कहा
हाँ, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली क्लास जो थी वो पहले असल में सूरह कहफ की क्लास से शुरू हुई थी, सूरह कहफ मुकम्मल करके सूरह अंबिया की क्लास, नहीं, सूरह अल कसस की तफसीर फिर हमने पढ़ी थी, फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हुई थी, और उसके दौरान ये निशान राह वाली क्लास शुरू हुई। निशान राह की क्लास के साथ साथ फिर तीसरी आओ आदाब सीखें वाली क्लास भी शुरू हुई, और फिर चौथी भी शुरू हो गई कससुल अंबिया वाली क्लास। तो अब जो है वो 4 क्लासेस साइमल्टेनियसली हफ्ते के दिन चल रही थी। तो आज जो इस सिलसिले का इख्तिताम हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलें हजरत जी के बारे में आपने बात नहीं करनी, तो आप जो है वो इसका एक कोई इख्तितामी बात कर दीजिए इस क्लास के बारे में। तो वो फिर जहन में रह गया था कि चलें ठीक है, इसका एक मंतकी अंजाम के तौर पर कुछ बातें जो है वो आपको गोश गुजार कर दी जाए। गोश गुजार का मतलब पता है? गोश गुजार आपके गोश्त में उतारे दिए हैं नहीं, गोश कहते हैं इसको, कान को, ठीक है, तो कान में पहुंचा दी जाए, कान के सामने रख दी जाए ताकि आप उसको सुन लें, ठीक है। तो ये था जहन में, तो सोचा कि इसी पे बात कर लेते हैं। मुझे लगता ही है कि आज की हमारी क्लास जो है वो शायद इसी में ही मुकम्मल हो जाए। तो ये सिलसिला शुरू क्यों किया गया था हमारे निशाने राह, ये सिलसिला बेसिकली एक्सटेंशन था, ये एक कंटिन्यूएशन ही थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह इतनी चल रही थी, इतनी लंबी चल रही थी, इतनी लंबी चल रही थी कि जो हमारी दूसरे बाद के अकाबरीन हैं उनकी बारी नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कब वो ख़त्म होगी, कब जो है वो सहाबा का सिलसिला ख़त्म होगा, तब जो है वो दूसरे अकाबरीन की बारी आएगी जो कि हमारे दौर से ज़्यादा करीब हैं। तो हमने कहा चलो साथ साथ ही ना निशाने राह का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक कड़ी थी इसकी, ये एक कंटिन्यूएशन थी उसकी, ठीक है, क्योंकि हमारे रास्ते के जो सबसे बड़े और सबसे असल निशान है वो तो नबी अलैहिस्सलाम ही है, ठीक है। तो फाइनल गोल अगर आप देखें रास्ते का, हमारा जो फाइनल गोल है वो तो नबी अलैहिस्सलाम है ना, बाकी सब तो फिर उनसे कम दर्जे के आते हैं, सहाबा भी जितने भी हैं सब नबी अलैहिस्सलाम से कम दर्जे के हैं, और फिर जो दूसरे अकाबरीन हमने पढ़े वो सारे सहाबा से भी कम दर्जे के हैं, ठीक ठीक है, तो ये हजरात कौन हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सिलसिले में सुना? ये कैसे निशाने राह बने? ये हमारी राह के निशान, ये हमारे लिए मेजर माइलस्टोन्स कैसे बने? तो अगर आप में से किसी से हम पूछें, या आप सबसे पूछें और आप में से कोई जवाब दे इसका कि कैसे बने, तो उसका क्या जवाब देगा कोई? ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों लोगों से सवाल है कि अगर कोई एक जवाब देना चाहे तो इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप कि वो निशाने राह कैसे बने? सोचे, बहुत सारी बातें ध्यान में आ सकती हैं। आप लोगों ने 3 साल तक जो है वो ये सिलसिला भी सुना है, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपने बड़े लंबे अरसे सुना है, तो कोई जवाब अगर आपके जहन में आता हो तो वो क्या होगा? ये सबका नजर आएगा ना इसके अंदर, एवरीवन
ये
एवरीवन
लिबरल
होना
का
चाहिए।
प्राइवेट लिखा है सिर्फ उधर क्या आएगा वही पब्लिक जैसे
लेकिन आना तो सबका चाहिए ना, एवरीवन में ही फिर वो डायरेक्ट मैसेज लिख करके जिस तरह से क्लासेस में आता है,
जी जी
यहाँ
सिर्फ
नहीं आता।
डायरेक्ट मैसेज ऐसे मॉडल इसमें वन टू वन करेंगे तो अलग बिकॉज इट इज पर्सनल
अच्छा, इसमें आप सबको डिस्प्ले नहीं कर रहे, वो नहीं देते। हाँ जी, कैसे बने ये सब के सब निशाने राह? इनमें कौन सी चीज थी जो के मुश्तरक थी, कॉमन थी? क्योंकि हम तो सबके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा जवाब होना चाहिए जो सब पे अप्लाई होता हो। पहले उन्होंने, एहतिशाम भाई नहीं,
नहीं।
एहतिशाम भाई ने पहले हाथ में।
नहीं। नहीं। नहीं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मुकम्मल इत्तेबा करने वाले, तो जिन्होंने नबी अलैहि सलाम की कामिल इत्तेबा करी तो वो निशाने राह बन गए। ये सवाल ठीक है, ये जवाब ठीक है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ये भी जवाब, इसका भी चले जवाब दें, ये सब जवाब ठीक क्यों नहीं है? अच्छा, उन्होंने लिखा, अल्लाह माशाल्लाह, आपने तो स्टोरी रैप कर दी। अच्छा चलिए, और जवाब जब तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है? नहीं जी। अच्छा चलें, आपकी फिर सुनना भी इन वाली क्लास आज नहीं हो सकेगी। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सुन्नत की इत्तबा करके ये निशान राह बन गए, दीन की खैरख्वाही दूसरों के लिए करके ये निशान राह बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मॉडल माना और उस पर चलने की कोशिश करी तो उससे ये निशाने राह बन गए। अच्छा, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की वजह से निशाने राह बन गए। अहले सुन्नत वल जमात, अकायद, उसकी वजह से ये निशाने राह बन गए, सुन्नत की इत्तबा से निशाने राह बन गए। लेकिन ये जवाब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सवाल क्या था? सवाल में हमने आपसे सिर्फ जो है ना निशाने राह क्लास वालों के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि हमने सब के बारे में पूछा था, जिसमें कौन भी शामिल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तो शामिल है ना उसके अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले निशाने राह है ना, वो कैसे निशाने राह बने? अपनी सुन्नत की तबाह करके, राइट? भाई दूसरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तबाह करी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी सुन्नत की तबाह करी, है ना? ठीक है, तो जवाब तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि सब पे अप्लाई होता हो। आपका जवाब तो नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी लोगों पर अप्लाई होता है, आप सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता। जी साइम भाई, अल्लाह का फजल उन पे था। जवाब तो माशाल्लाह आपका मियाँ फिल मियाँ है। बिल्कुल 100% सही जवाब है, ठीक है। लेकिन सवाल हमारा इस तरफ से है, उस तरफ से नहीं है। आप उस तरफ से जवाब दे रहे हैं, ऊपर से, कि अल्लाह का फजल हुआ निशाने राह बन गए। हम तो नीचे से पूछ रहे थे कि इन्होंने क्या किया कि ये निशाने राह बन गए। ठीक है, तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से निशाने राह बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस हाउ टू लिव दिस लाइफ। अच्छा ठीक है, तो ये निशाने राह ऐसे बन गए। यहाँ पे जो बॉयज की तरफ से जवाब आया ना, तो अकलमंदी अगर आप दिखाएं तो आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि एक जवाब इसमें लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा नहीं है आपके सामने, क्योंकि वो सही जवाब है, तो मैंने पढ़ा नहीं कि वो आपको पता चल जाएगा कि वो सही जवाब है। तो जवाब सही जो है ना वो ये है कि इन सब ने आजिजी इख्तियार की, इन सब ने अपने आप को मिटाया, इन सब ने अपने आप को झुकाया, ठीक है, इन सब ने बंदगी इख्तियार करी, अपने आप को बंदा बनाया। किसका बंदा बनाया? अल्लाह का बंदा बनाया इन सब ने। ये जवाब सब पे अप्लाई होता है, नबी अलैहिस्सलाम से लेकर के पीर जुल्फकार अहमद हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह तक, ये सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या है उसूल, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिर बता भी दिया कि मन तवाज़ा लिल्लाही रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह की रजा की खातिर तवाजो इख्तियार करता है, अपने आप को मिटाता है, अपने आप को झुकाता है ना, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको उठाते हैं। और जब उठाते हैं, अल्लाह जब किसी को उठाते हैं, तो फिर वो निशाने राह बन ही जाता है, ठीक है, फिर वो लोगों की नजरों में भी आ ही जाता है, कोई ज्यादा लोगों की नजरों में आ जाता है, कोई कम लोगों की नजरों में आ जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो उसकी इज्जत कंफर्म हो जाती है, पक्की हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी थी कि हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह निशाने राह बने, या मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह निशाने राह बने, या जो है मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह निशाने राह बने, या जो भी बने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जहां से बात शुरू हुई थी और आज तक, ये सारे के सारे लोगों में एक बात कॉमन थी कि इन सब ने अपने आप को मिटाया, ठीक है ना। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने दुनियावी माल दौलत अता फरमाई थी, दुनियावी इज्जतें अता फरमाई थी, बेहतरीन उस जमाने का हुक्मरान खानदान अता फरमाया था, गवर्नरी भी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने बिल्कुल मिटा दिया, ठीक है, झुका दिया अपने आप को, अल्लाह ताला ने उनको उठा दिया, ठीक है। उसी तरह से हर बंदे ने ऐसे ही किया, हर शख्स ने ऐसा ही किया, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि जिनको सबसे ज्यादा उठाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफाना लकर ज़िक्रक, वरफाना, हमने उठाया आपके जिक्र को, कि अब इस सीरत क्लास में बैठ करके 1400 साल गुजरने के बाद भी लोग आपका जिक्र करेंगे, राइट। और जहां जहां जो है वो अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, वहां वहां आपका जिक्र किया जाएगा। सीरत क्लास तो क्या चीज, हर आजान में जहां अल्लाह का नाम आता है, वहां नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता है, राइट। नमाज के अंदर जहां अल्लाह के ऊपर कि आप तस्बीह कर रहे होते हैं, हम्द बयान कर रहे होते हैं, वहीं नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी दुरूद शरीफ भेज रहे होते हैं। वरफअना लका जिक्रक, अल्लाह ने उठाया आपके जिक्र को, ठीक है, आपके तस्करे को। फरमाते हैं ना, अलम यजिद का यतीम फआवा, क्या हमने आपको यतीम नहीं, आप यतीम नहीं थे, आपका तो पीछे तो कोई था ही नहीं, कोई फैमिली आपकी थी नहीं। हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम, कई हजार साल पहले जो इस्माइल अलैहिस्सलाम गुजरे थे, ठीक है, वरना तो आप कोई, आपके तो अब्बा आपके पैदा होने से पहले दुनिया से चले गए थे, आपकी अम्मा जो है वो पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद चली गई थी, आप तो यतीम थे, लेकिन हमने आपको ठिकाना दिया। अलम यजिद का यतीमन फआवा वजदा का वॉलन फहदा, आपके पास इल्म नहीं था, गुमराही का मतलब, वॉल का मतलब गुमराही होता है, लेकिन यहां पर नबी अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो गुमराही का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फितरतन नेक थे, अच्छी फितरत, अच्छे अखलाक, बेहतरीन अखलाक, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्म नहीं था। कली बात हो रही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, और इस मसले का क्या जवाब है, ये दीन क्या कहता है इस बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के पास ये इल्म नहीं था, ठीक है। वह वजदा का वालन फहदा, हमने आपको हिदायत दी, वह वजदा का आइलन फअग़ना, और आप जो थे वो बड़े ऐसा माशाल्लाह बीवी बच्चों वाले, लेकिन खर्चे पूरे नहीं होते थे, गुर्बत थी, हमने आपको गनी कर दिया, हमने आपके ऊपर माल और दौलत के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो देखिए कुरान अजीम शान के अंदर जो है ना वो हमें हकीकत पता चलती है। ये निशान राह क्लास में भी जहां जहां आपने कुरान सुना वो असल हकीकत थी, वो बताता है कि निशान राह कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और उनके साथ फिर क्या मामला होता है। और एक पॉइंट और साजिद ने लिखा था कि आपने इस क्लास के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी करामतें भी सुनी होंगी, है ना, करामतें वरामतें आई थी इस क्लास में बहुत सारे, करीब के जमाने में ज्यादा होती थी, पहले शायद इतनी नहीं होती थी। तो ये करामतें जो है इनका क्या हकीकत है? ठीक है, करामतों को कोई डिस्क्राइब करे जरा अच्छे तरीके से जो समझ में आती हो बात। तो करामतों का क्या मतलब होता है, व्हाट व्हाट इज करामत? जी कोई बताएगा करामत से हमें क्या सबक मिलता है? सबक मिलता, ये नहीं कि करामत की डेफिनेशन क्या है, ये नहीं पूछ रहे आपसे, ये तो उम्मीद है कि आपको अब आती होगी करामत की डेफिनेशन के, लेकिन ये बताएं कि करामत से हमें क्या सबक मिलता है कि फलाने बुजुर्ग की ये करामत हुई, उनको पता चल गया कि जी बाद में होने वाला है, वरना तो अल्लाह ताला ने हमें फ्यूचर का इल्म नहीं दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने फ्यूचर का इल्म इंसानों के ऊपर नहीं खोला। अब किसी बुजुर्ग को अगर ये बात दिल में आ गई कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो ये क्या कहलाएगी? ये करामत कहलाएगी। ठीक है, तो करामत से हमें क्या सबक मिलता है करामतों के बारे में सुन के? क्या करामत सबको मिल जाती है? क्या करामतें सबको, किसको मिलती है करामत? कि फ्यूचर के बारे में कुछ पता चल गया, या किसी के जो है वो माजी के बारे में कुछ पता चल गया, हालांकि उनको नहीं पता था लेकिन पता चला तुम उधर से आए हो, अच्छा, मुझे पता है कहाँ से आ रहे हो तुम मुझे पता है तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। तो ये करामत है ना, ये किसी इंसान को किसी के दिल के अंदर अंदाजा तो नहीं आ रहा होता कि क्या नीयत लेकर क्या है। ओ जी पीर मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो पीर जो है जिसको पता ना चले कि मुरीद जो है वो क्या नीयत लेकर क्या है, वो पीर कराने के काबिल नहीं है। तो ये क्या है? ये करामत है ना, दिल की नीयत पता चल गई। तो ये करामत कैसे मिल गई भाई उनको, क्यों मिल गई? ऐसे ही फ्री में पड़ती है? ऐसे चलते पड़ते किसी को जो है वो अल्लाह ताला करामत दे देते हैं? करामत क्यों मिलती है? ठीक है भाई, करामत भी तो इसीलिए मिलती है ना ताकि अल्लाह के बंदों में ये बंदा जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, लोग इसकी इज्जत करना शुरू हो जाए, लोग इसको कुछ समझना शुरू हो जाए, लोग इसकी बात मानना शुरू हो जाए। तो यही तो है, मन तवाज़ा लिल्लाही रफ़अहुल्लाहु, राइट, रफ़अहुल्लाहु की एक शक्ल ये है कि अल्लाह ताला करामतें भी दे देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला करामतें भी दे देते हैं। हाँ भाई, वो चीज जो कि आम इंसान नहीं कर सकता, फलाने बुजुर्ग साहब जो है उनसे यही चीज भी हो जाती है। तो ये भी तो मन तवाज़ा लिल्लाही की वजह से ही होता है ना, ऐसे ही कोई थोड़ी कि वो खानदानी तौर पर थे, वो किसी बुजुर्ग के खानदान में थे इस वजह से उनको करामतें मिल गई, या उनकी चेहरा अच्छा था इस वजह से उनको करामतें मिल गई, राइट? नेकी की वजह से मिली ना, तवाजो की वजह से मिली ना, अपने आप को मिटाने की वजह से मिली ना। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि करामतों का शौक तो नहीं होना चाहिए लेकिन अल्लाह की नजर में इज्जत का तो शौक होना चाहिए ना, कि हम अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत वाले बन जाएं, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएं। तो उसका क्या तरीका है? तवाजो, अल्लाह की रजा के लिए तवाजो इख्तियार करना। ठीक है, हम कहते हैं अक्सर ना वो कस्टमर सर्विसेज वाले भी बड़ी तवाज़ो इख्तियार करते हैं। आप जाएं किसी बड़े से स्टोर के अंदर, उनके यहाँ कस्टमर सर्विसेज का एक वो बना होता है, आप उनसे जाकर कोई बात करें, बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे, बड़े बिछना शुरू हो जाएंगे आपके सामने, लेकिन वो जो आपके सामने बिछ रहे हैं, वो जो तवाज़ो इख्तियार कर रहे हैं, वो किसके लिए इख्तियार कर रहे हैं? वो कंपनी के लिए इख्तियार कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए इख्तियार कर रहे हैं, ताकि कस्टमर जो है वो इम्प्रेस हो जाए और दोबारा हमारे पास ही आए हमारा बाल खरीदने के लिए। ठीक है, वो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार नहीं कर रहे। तो अल्लाह तो उनको उठाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करते। ठीक है, और ये बात हो गई कि भाई क्यों निशाने राह बनते हैं, कैसे निशाने राह बनते हैं, तवाज़ा लिल्लाह, ऐसे निशाने राह बनते हैं। और जब अल्लाह ताला उठाते हैं तो फिर अल्लाह ताला करामतें भी अता फरमा देते हैं, जिसको चाहते हैं करते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको करामत नहीं अता फरमाते। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी बात कि अब ये जो अल्लाह वाले जब अल्लाह ताला उनको उठाते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, चलें कोई बताएगा। अब वो क्या करते हैं जब अल्लाह ताला ने उनकी तवाजो को कबूल कर लिया, फिर उनके ऊपर अपना फजल फरमा दिया और उनको इज्जत अता फरमा दी, उनको उठाया, उनको बड़ा बना दिया, अब वो क्या करते हैं उसके बाद, व्हाट इज देयर जॉब आफ्टर दैट। फर्स्ट देयर जॉब वॉज टू अनाइहिलेट देमसेल्व्स, अपने आप को खत्म करना, अपने अपने आप को अल्लाह के सामने मिटाना। जॉब डन, मिटा लिया भाई, अल्लाह ने उठा दिया, अल्लाह ने फिर अपनी जॉब कर दी, उठा लिया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद मैं तो मिट चुका, राइट। फिर वो कब्र में चले जाते हैं, उसके बाद मिट गया आप जो है, बस सब तो कब्र में जाना है, क्या करते हैं उसके बाद फिर वो। जी रेहान भाई,
दूसरे
यानी लोगों को अल्लाह के बारे में बताते हैं,
लोग को
दूसरे लोगों को मिटाने की कोशिश करते हैं, इरेजर लेकर राइट। क्या करते हैं कि अब उनका काम ये होता है कि वो अल्लाह के बाकी बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम करें, बाकी बंदों को अल्लाह के, उनको भी अल्लाह से जोड़ने का काम करें। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, खुद क्या किया, अल्लाह से जुड़ने के लिए
वाह
अपने आप को मिटाया, ठीक है। तो दूसरे बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए भी क्या करना होगा, उनको भी ये बात समझानी होगी, सिखानी होगी, डंडे मार मार के उनको मिटाना नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उनको सिखाना होगा कि देखो आप अपने आप को अल्लाह के लिए कैसे मिटाएं, आप अल्लाह के लिए तवाजो कैसे इख्तियार करें, ठीक है। यही काम है अल्लाह वालों का करने का, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना, यानी उनको तवाजो सिखाना, ठीक है। और तवाजो सीखने के लिए फिर जो सबसे बेहतरीन सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज टू लर्न तवाजो फ्रॉम, वेयर इज दैट, व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ नॉलेज वेयर यू लर्न ह्यूमन तवाजो, यानी एक ह्यूमन बीइंग जैसी तवाजो अख्तियार कर सकता है, उसकी बेस्ट सोर्स क्या है, नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा तवाजो मुमकिन ही नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ह्यूमनली पॉसिबल तवाजो आपको कहां से मिलेगी, सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम की जात से मिलेगी, फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा कराम की जिंदगियों से मिलेगी, और सहाबा कराम की जिंदगियों के बाद ताबईन, तबा ताबईन, एंड देन ऑल द चेन ऑफ आवर मशायख, ठीक है। क्योंकि मशायख ही वो होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने आप को अल्लाह ताला के सामने मिटाया होता है, ठीक है। तो अब ये जो अल्लाह वाले होते हैं, शोज द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए पायस पर्सन, अपना नफी, एक मिनट पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस हाउ टू लिव दिस लाइफ, ठीक है। तो अब ये जो मशायख है ना, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और भी सुन लीजिए कि कभी कभी ये जुमलों में बोल देते हैं कि अपने आप से जोड़ना, आप मुझसे जुड़ जाइए, ठीक है, या आप जो है वो फलाने से जुड़ जाइए, ठीक है। हमारे हजरत ने अक्सर इस फकीर को ये कहा कि आप फलाने साहब को अपने से जोड़ लीजिए, ठीक है। एक दफा तो हमारे एक सीनियर थे जो हमसे पहले हजरत से जुड़े हुए थे, और हमारे तो हम तो सिलसिले में उनको अपना सीनियर ही समझते थे, हजरत जी ने उनका नाम सुनकर कहा आप उनको अपने आप से जोड़ लीजिए। हमने कहा हजरत वो तो बड़े हैं, उनको मैं अपने आप से कैसे जोड़ दूं, उसे क्या होता है, अगर वो बड़े हैं उसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये अपने से जोड़ने का मतलब क्या है, अपने से जोड़ने का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि बस शेख से जुड़ जाओ और बस, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शेख से जुड़ जाओ, यानी शेख से सीखना शुरू कर दो कि अल्लाह से कैसे जुड़ना है। मकसूद शेख नहीं है, मकसूद कौन है, गोल कौन है, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह से जोड़ना है। तो अब चूंकि वो जब तक यहां नहीं जुड़ेगा तो फिर वो अल्लाह से जुड़ नहीं सकता, क्यों नहीं जुड़ सकता, जब तक वो यहां यानी मशायख के सिलसिले से नहीं जुड़ेगा तब तक वो अल्लाह से जुड़ नहीं सकता, क्यों नहीं जुड़ सकता भाई। तो शेख ही आईना दिखा सकते हैं, आईना तो बाजार में मिलते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि जब तक वो कोई और क्यों नहीं अल्लाह से जोड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है कि जब तक वो मशायख से नहीं जोड़ते, इस्लाह की खातिर मशायख से नहीं जोड़ते, उस वक्त तक वो किससे जुड़े हुए होते हैं? जनाब तो जवाब, शैतान से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख कौन होता है? शैतान उसका शेख होता है। ठीक है, तो जो जिसका शेख शैतान हो, जो यानी शैतान से जुड़ा हुआ हो, वो कभी रहमान से जुड़ सकता है? वो अल्लाह ताला से जुड़ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? तो इसी वजह से शेख आईना दिखाते हैं, शैतान जो है वो एक दूसरे किस्म का आईना दिखाता है। वो आईना क्या होता है जो शैतान दिखाता है? वो आईना, वो ऐसा आईना होता है कि जिसके अंदर बुराई अच्छाई नजर आ रही होती है, और अच्छाई बुराई नजर आ रही होती है, नेकी बदी नजर आ रही होती है, और बदी जो है वो नेकी नजर आ रही होती है। ये बड़ा स्पेशल किस्म का आईना है जो शैतान ने इजाद किया हुआ है,
बिल्कुल
मुजैन करके। कुरान मजीद कहते हैं ना मुजैन करके, तो इसका मतलब यही है, वो उसके पास एक ऐसा आईना है जो कि उल्टा दिखाता है, इन्वर्टेड किस्म का वो इमेज दिखाता है इंसान को। ठीक है, तो जब तक वो शैतान से जुड़ा रहेगा, वो अपनी नेकी को बुराई समझता रहेगा, वो अपनी बुराई को नेकी समझता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका हल क्या है कि इस्लाह की नीयत से मशायख के साथ जुड़ना, ताकि वो अच्छा साफ सुथरा वाला आईना दिखाएं, असली वाला आईना दिखाएं, कि जो अच्छाई है वही अच्छाई है, जो बुराई वो अच्छाई नहीं है, राइट? तो अल्लाह वाले जो हैं, मशायख जो होते हैं, वो एग्जैक्टली यही वाला काम करते हैं। ठीक है, अपने से जोड़ने वाला काम नहीं करते, बल्कि अल्लाह से जोड़ने वाला काम करते हैं, और इसके लिए कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते। जो उनको मौका मिलता है, वो उस वक्त कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसी नसीहत करते हैं, जिससे कि अल्लाह के बंदे जो है वो अल्लाह से जुड़े, अल्लाह से जुड़े। कई साल पहले मुझे याद है कि हम थे शजा होटल के अंदर हज जी के साथ, मदीना मुनव्वरा में है ना शजा होटल, देखे? ठीक है, तो वहां मुझे याद है हज जी ने जुमला कहा था, मैंने पहली दफा ही कम से कम वो जुमला सुना था। फरमाया कि दोस्त यार कहते हैं, कि हमारे दोस्त यार कहते हैं कि यादे इलाही के बगैर दुनिया की जिंदगी बेमजा है, यादे इलाही के बगैर दुनिया की जिंदगी बेमजा है। मैं कहता हूं कि यादे इलाही के बगैर दुनिया की जिंदगी बदमजा है, बेमजा नहीं है, बदमजा है, कड़वी है, राइट? काबिले नफरत है। कड़वी चीज से कोई मोहब्बत करता है? नफरत करते हैं ना कड़वी चीज से, थू थू करते हैं ना, निकालते हैं अपने मुंह से बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह की याद के बगैर बदमजा है, सिर्फ बेमजा नहीं है। ठीक है, और एक दफा फरमाया कि काशिफ साहब, आपको पहले भी अल्लाह ही खिला रहा था, आप अपने दफ्तर से नहीं पल रहे थे, आप अपनी मेहनतों से नहीं पल रहे थे, आपको पहले भी अल्लाह खिला रहा था, आपको आगे भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब कैसे इंसान का जहन बनता है ना, ठीक है, सोच बनती है कि भाई अगर दफ्तर वालों ने जो है वो ठंडी दिखा दी, यानी ये हम आपको अब हम मजीद नहीं रख सकते, हम आपको फायर कर रहे हैं, अब आप जो है वो रिडंडेंट रिसोर्स बन गए, राइट? तो परेशान हो जाता है इंसान, यार अब क्या होगा, अब कैसे जो है वो कमाएंगे कहां से, और जो है वो इकामा कौन करेगा, है, और रहेंगे कैसे, और काम कैसे चलेगा, और गुजारा कैसे चलेगा। तो फरमाया, पहले भी गुजारा आपका दफ्तर नहीं चला रहा था, अल्लाह आपका गुजारा चला रहा, और आगे भी अल्लाह ही आपका गुजारा चलाएगा। ठीक है, तो कम से कम इंसान के जहन में तो बात आ जाती है ना, दिल में तो बाद में उतरती है, वो जहन से जो है ना, वो दिमाग से दिल में आते आते जरा टाइम लगता है, लेकिन चैनल यही है, रास्ता यही है। पहली चीज जो है वो कान से अंदर जाए, दिमाग में जाए, फिर दिमाग से सीप करते 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 दिल में आए। अगर यहां पर ही नहीं आई तो फिर इधर कैसे पहुंचेगी? ये नहीं हो सकता, पहले इधर आती है, इधर से होते हुए अंदर जाती है, अंदर से फिर डाउनलोड होते होते टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह, अनलेस के आप कुछ और हरकत कर दें उठा करके उसको बाहर निकाल दें, फिर तो वो अंदर नहीं जाएगी, लेकिन अदरवाइज उसका नेचुरल पाथ यही है कि फिर वो बिलाखिर दिल में भी उतर जाती है। ठीक है, एक और आखिरी बात करके, क्योंकि यहीं पे बैठे हुए हैं जहीर साहब के घर में, तो यहाँ से बराबर में ही शाहिद साहब का भी घर है, तो आप सबको याद ही होगा, चंद ही दिन बच्चों को भी याद होगा कि अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पिछले रमजान मुबारक में शुरू 3 दिन जो है वो हमारे साथ थे, शाहिद साहब के घर पे उनको ठहराया गया था, बहुत खुश थे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत खुश थे। ठीक है, और जब यहाँ से हम निकले और एयरपोर्ट पे, फिर ये आजिज और घर वाले जो है पीछे, मजान भी बैठी हुई थी, घर वाले पीछे बैठे हुए थे अजीज सर जिसके साथ बराबर में, तो हम एयरपोर्ट जब छोड़ने के लिए जा रहे थे गाड़ी में बैठे थे, तो वहां पे इस आजिज ने हजरत से एक बात कही कि हजरत जी जो हम आपके अभी इज्तिमा से होकर आए हैं ना, अक्टूबर में इज्तिमा हुआ था और रमजान मुबारक जो था वो फरवरी के एंड में शुरू हुआ था, तो इज्तिमा में आपने मोहब्बत इलाही के ऊपर एक बयान किया था और उस बयान में आपने एक अजीब बात फरमाई थी जो कि पहले मैंने कभी आपसे नहीं सुनी थी, हालांकि मोहब्बत इलाही के बयान तो हजरत के शुरू दिन से सुनते हुए आ रहे थे। ठीक है, लेकिन वो आपने जो बात फरमाई ना वो अजीब जो है वो दिल में लग गई, कि फरमाया आपने कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो है फरमाते हैं ना, वल्लजीना आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह, कि ईमान वाले तो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, तो आपने ये फरमाया था कि अल्लाह ताला ने यहां पर ईमान वालों को हुक्म नहीं दिया है कि तुम्हें तो चाहिए कि अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करो, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि फरमाया कि अल्लाह ताला से तो शदीद मोहब्बत करते हैं, गोया कि अल्लाह ताला सिर्फ खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, कि ईमान वाला तो अल्लाह ताला से मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता। तो फरमाया था आपने कि जो हसीन होता है ना, जो जमील होता है, जो साहिबे कमाल होता है, ये उसकी शान के खिलाफ होता है कि वो किसी को कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, भाई मैं सबसे हसीन, मैं सबसे जमील, मेरे पास सारी ताकत, मेरे पास सारी अजमत, मेरे पास सारा कमाल, तो सबको मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला के पास तो हुसन बनाया किसने, अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह खुद कितने हसीन होंगे। तो फिर आपने फरमाया था कि जैसे जैसे ईमान वाला अल्लाह ताला के हुस्नो जमाल को जानता जाता है, उसके कमाल को जानता रहता है, वैसे वैसे उसकी मोहब्बत बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारे दिल में ये बात सुन करके हजरत जी ये ख्याल आया कि आपके हुक्म पे हम जो दीन का काम कर रहे हैं, नस्बत की मेहनत का अल्लाह ताला की तौफीक से और आपकी दुआओं से जो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें कि हम ना अल्लाह ताला के जो कमाल और हुस्न और जमाल की आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं उन सबको इकट्ठा करें एक जगह पे, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला के बारे में उन आयात की रोशनी में बताएं। ठीक है, ताकि जैसे जैसे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बारे में मजीद जानते रहेंगे, वैसे वैसे उनकी मोहब्बत बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब आप बताएं ये कोई गलत बात थी, मैंने कोई गलत बात कही थी, ये मैंने कोई हजरत जी की बात को उल्टा समझा था, गलत समझा था, कोई बुरी सजेशन पेश करी थी? नहीं ना, बिल्कुल 100% करेक्ट सजेशन पेश करी थी, और हजरत जी की बात ही के मुताबिक पेश करी थी, अपनी तरफ से भी नहीं, मैंने फलानी किताब में पढ़ा था, मैंने फलानी जगह सुना था, इस वजह से मेरे जहन में ये ख्याल आया, ये सब तो कुछ नहीं था। लेकिन हजरत जी ने क्या जवाब दिया, पता है आपको, कुछ लोगों को तो बताया भी है, हजरत जी ने क्या जवाब दिया इसके ऊपर, हजरत जी ने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करी, कुछ नहीं कहा, वाह जबरदस्त आइडिया, गुड आइडिया, ग्रेट, ये भी नहीं कहा, ना ये कहा बैड आइडिया, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, राइट, ये भी नहीं कहा। क्या कहा, जो हजरत जी का काम है करने का, जो असल काम है करने का, कि काशिफ साहब आपको अल्लाह से जोड़ना ये मेरा काम है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह आपकी निगाह से ओझल हो जाए, ये सब नहीं कहा उन्होंने, तो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह आपकी निगाह से ओझल हो जाए और आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बिजी हो जाए, और आपकी नजर जो है वो अपने काम के ऊपर, अपने आइडियाज के ऊपर और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाकर के फिक्स हो जाए। तो हजरत जी ने फरमाया, काशिफ साहब, ये जो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। और उसके ऊपर कुरान मजीद की ये आयत दलील के तौर पर काफी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, वो युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु, कि अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत करी, फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत करी। यानी पहले अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, फिर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्या किया हजरत जी ने ये जुमला फरमा करके, क्या किया हजरत जी ने? हजरत जी ने सारी की सारी डिस्कशन जो है मोड़ करके अल्लाह की तरफ कर दी। सारी फिक्र, सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ फेर दी और अपने अमल से, अपनी जात से, अपने ख्यालात से, अपने आइडियाज से बिल्कुल उस वक्त जो है ना वो हमें रोक दिया। काम करने से नहीं रोका, लेकिन उस वक्त की सोच से जो है ना वो हजरत अपना काम कर गए। ये हजरत के करने का काम है, बाकी काम हमारे करने के, कि हम हजरत की बात को सुने, समझें और उसके मुताबिक उसकी रोशनी में रह करके फिर काम करें, जो भी काम करना है, दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम। ठीक है, तो अल्लाह वाले जो है ना वो ऐसे करते हैं, यही उनका काम होता है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। और ये आखिरी बात एक साजिद ने लिखी थी, किसी वजह से फरमाते थे, अल्लाह बस बाकी अबस, अल्लाह बस, बस अल्लाह ही है और बाकी सब तो अबस है। अबस का मतलब होता है फजूल, बेकार। ठीक है, तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे दीगर अकाबरीन तकरीबन सारे के सारे जो है वो दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, चंद यहां पर रह गए हैं, वो भी एक ना एक दिन रुख्सत हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे बड़े भी एक ना एक दिन रुख्सत हो जाएंगे, सब इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह नहीं जाएगा, अल्लाह कहीं नहीं जाएगा, अल्लाह वैसे ही अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद रहे। आबोताब का मतलब होता है अपने पूरे हुस्न व जमाल के साथ, अपने कमाल के साथ, जैसे सूरज अपनी आबोताब के साथ रोजाना निकलता है लेकिन वो तो गुरूब हो जाते हैं ना, अल्लाह ताला अपनी आबोताब के साथ हर वक्त मौजूद रहता है, वो कभी भी गुरूब नहीं हो। इसी वजह से आप में से चंद जो है वो आते हैं ना खत्म ख्वाजगान की मजलिस के अंदर, तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, या बाकी अंतल बाकी, ए बाकी आप ही बाकी हैं और कोई बाकी रहने वाला नहीं है, बाकी हर कोई फिना हो जाने वाला। ठीक है, तो हमारे की बका भी अल्लाह की बका के साथ ही है, अगर अल्लाह के साथ हैं तो हम भी बाकी रहेंगे, यानी दुनिया के अंदर भी इज्जतें मिलेंगी और आखिरत में भी इज्जतें मिलेंगी। ठीक है, और अल्लाह अगर हमारी जिंदगी से निकल गया, हमने अल्लाह को फरामोश कर दिया, अल्लाह से नहीं जुड़ सके, तो बस कुछ भी ना किया, हामिद पिया कुछ ना किया, खाया और पिया यूं ही चल दिया। तो फिर हम भी हामिद अंकल की बात नहीं कर रहे, लेकिन हामिद पिया की तरह कुछ ना किया, बस खा पी करके यूं ही इधर से आगे की दुनिया में चले गए। तो ऐसी जिंदगी से अल्लाह ताला हम सब की और आप सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इन हीरो से असल बात सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए, असल मकसद सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए और इनके रास्ते के ऊपर चलने के लिए अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। हमारा अल्लाह हम सबको हुक्म फरमाता है इनके पीछे पीछे चलने का, यानी इन्हीं के जैसे आजिजी और इनके सारी इख्तियार करने को, इन्हीं की तरीके से इसका इल्म हासिल करने को और इसके ऊपर अमल करने को फरमाता है, फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, इत्तबा करो उनके रास्ते की जो कि मेरी तरफ इनाबत इख्तियार करने वाले, जुड़ने वाले बन गए, ना कि अपने नफ्स की तरफ, ना कि अपनी ख्वाहिशात की तरफ, ना कि इस दुनिया की लज्जतों की तरफ, बल्कि खास मेरी तरफ पलटने वाले बन गए, उन्हीं के रास्ते की इत्तबा कर। ठीक है, यही मकसद था इस वाले सिलसिले को शुरू करने का। अल्लाह ताला इस मकसद को पाया तकमील तक और मकसद के हुसूल तक पहुंचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआवाना أن الحمد لله رب العالمين. कोई सवाल या कमेंट अगर किसी के पास हो शेयर करना चाहें हमसे, तो थोड़ा सा तो टाइम अभी है इसके लिए, हम आपका इंतज़ार कर सकते हैं, वरना फिर जल्दी क्लास ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद दुआ कर लेंगे. एनीथिंग भाई, सवाल जवाब कमेंट, बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ बड़े भी मौजूद हैं, मिला तो कर लो, फिर उसके बाद हम दुआ कर लेंगे. अच्छा याद दिलाए वैसे, दुआ करना. बड़ों की मजलिस में तो तौबे कलमात होते ही रहते हैं, और आप भी उनमें शामिल ही होते हैं, तो वो भी ठीक है, आप लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों की मजलिस में कभी नहीं पढ़े, आज क्यों ना ये भी कर लें. तो खास जो है वो आपकी मजलिस के साथ इसका ताल्लुक हो जाएगा, इस वजह से आज हम आपके साथ भी वही तौबे कलमात जो कि हमने अपने हजरत के साथ पढ़े और बार बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, एक बार आपके साथ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो इसके लिए दिल के अंदर तौबा की नीयत होनी ये बहुत जरूरी है, ताकि हमारी तौबा जो है अल्लाह ताला कबूल भी कर लें. तौबा की नीयत के साथ इन कलमात को आप भी पीछे पीछे दोहरा लें. एक मिनट, एक और चीज याद आई है, कुछ कपड़ा खपड़ा तो नहीं होगा, इमामा या तेरे उस सुन्नत पे भी अगर अमल हो जाए तो क्या ही बात.
एक और
वो ला रहे थे, चले आप, ये इतना लंबा भी नहीं होगा मैंने. नबी अलैहिस्सलाम ने जो बैत ली ना अपने सहाबा कराम से, तो उसकी एक शक्ल ये भी होती थी कि कपड़ा बिछा देते थे, ठीक है, और उस कपड़े के जो जहां जहां पहुंचता था वहां वहां पकड़ लिया करते थे. आप में से चंद लोगों ने देखा भी होगा, तो जी भी ऐसे ही किया करते थे, हमारे मशाइख भी ऐसे ही किया करते थे, ये सुन्नत की इत्तबा में ही है, ठीक है. तो अगर मिल जाता है तो हम यहाँ पे बिछा लेते हैं. एक बैत का तरीका ये भी था, बस हाथ खड़े करवा लिया, सब हाथ खड़ा कर, तो हाथ खड़े करके भी बैत हुई थी, और उसके अलावा खाली जुबान से भी, ना हाथ खड़ा किया ना जो है वो कपड़ा बिछाया, बस जुबानी, इस तरह से मस्जिद नबी के अंदर बैत हुई, या बड़े मजमे के अंदर कोई ऐसी बैत हुई, बैत रिजवान, वहां पे कपड़े बिछाने का नहीं है. एक और भी तरीका था कि बाकायदा हाथ पे हाथ, बैत रिजवान का पढ़ा था ना हमने सीरत नबी में, कि नबी रसूल का हाथ होता था और ऊपर से जो है वो साहबी का, साहबी का, साहबी का, इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, अल्लाह का हाथ जो है वो इनके हाथों के ऊपर होता था. अजी ऑनलाइन हजरात से माजरत के साथ, आप तक कपड़ा नहीं पहुंचा सकते. लग जब तक कपड़ा आता है, मुझे एक बात याद आ गई, कल आप लोगों ने एक बात सुनी होगी बयान के अंदर, कि वो जो लिखा था ना उन्होंने बोर्ड के ऊपर, हमने बताया ना कराची में एक जगह बोर्ड देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने कुरान मजीद को सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक पढ़ा, मुझे अल्लाह ताला रहमत के सिवा और कुछ ना नजर आया, ठीक है. तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करी थी कि भाई इस तरह से बात जो है ना आजकल के दौर के अंदर इसका कोई और मतलब होता है, लेकिन इसी बात को अगर थोड़ा सा आगे एक लफ्ज में ऐड कर दिया जाए ना, तो फिर बात बिल्कुल ठीक हो जाती है. वो क्या, कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला रहमत के सिवा और कुछ नहीं, उसके साथ अल्लाह ताला तौबा करते हैं, उसकी तौबा को कबूल करते हैं, ठीक है, लेकिन तौबा के बगैर नहीं. तो तौबा जो है ना वो शर्त है, वो हमें हमेशा बतानी चाहिए. अल्लाह ताला जो है वो तौबा के बगैर किसी को माफ कर दे, वो अल्लाह के करने का काम है, लेकिन हमने ये नहीं करना कि तौबा भी नहीं करनी, नादम भी नहीं होना गुनाह के ऊपर, और बस ऐसे ही जन्नत में चले जाना है, ऐसी जो है वो हमने ये हरगिज हरगिज नहीं करना है. नहीं, मैं आगे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सब जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ये कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सबके हाथ में इसमें जरा अपने इसमें जगहों से आगे आगे बढ़ना होता है। आगे बीच
बीच में सीधे में कुछ भी साइड बैठ
ये सिर्फ बैत तौबा है, इस्लाही बैत भी इसको कहते हैं, तसव्वुफ की बैत भी इसको कहते हैं, ठीक है, जिसका ताल्लुक कुछ हुकूमत हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, गुनाहों
इधर आ जाए बच्चे, इधर से खाले को इधर जाए, वही जगह मिल रही ना, इधर आ जाए
से तौबा मांगता है।
जो नहीं पकड़ पा रहे, शुजा इधर आ जाए। हाँ
आपने अल्लाह ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. معمولات بچے भी कर सकते हैं, यानी ये कोई थोड़ी कि बड़े ही करना है, कर सकते हैं, मामूलात वही हैं, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ माशाल्लाह आप सब पढ़ते ही हैं, अक्सर तो हाफिज़ हैं, बाकी हाफिज़ बन रहे हैं, बाकी बाद में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। कुरान शरीफ की तलावत हो गई, इस्तग़फ़ार पढ़ना हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ना हो गया, गुनाहों से तो सबने बचना है, बच्चा हो या बड़ा। ठीक है, मोहम्मद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था, कौन सा सवाल? आप बाकी भी है ना, अक्सर मोहम्मद साहब के ही उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो इस वजह से आपके सामने उस सवाल का अगर हम रख दें कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि भाई इस्तफार सब पढ़ें, दुरूद शरीफ सब पढ़ें, कुरान शरीफ सब पढ़ें, ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि भाई हमें सवाब मिले, तो आपको पता है कि सवाब और गुनाह ये तो जब आप बड़े हो जाते हैं तब फरिश्ते लिखना शुरू करते हैं। क्या ख्याल, फरिश्ते कब लिखना शुरू करते हैं? जब बड़े हो जाते हैं, जिसको बालिग होना भी कहते हैं। ठीक है, अभी तो हम बालिग ही नहीं है, अभी तो हम बड़े नहीं, हम क्यों करें भाई? हैं, हाँ वखा ना सवाब लिखा जा रहा है। अच्छा, गुनाह से क्यों बचे? गुनाह करते हैं दम जबरदस्त छुट्टी है, फरिश्ते साहब ने तो लिखना नहीं है, तो मौका है, जितना कर सकते हो तो कर लो, राइट। खैर, उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ये सवाल किया था कि बच्चों के तो गुनाह नहीं लिखे जाते हैं, आपने मतलब जाहिर क्लासों में सुनते रहते हैं बयानात में वगैरह, तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, तालिब इल्माना सवाल इसको कह। और जो बड़े हैं और जो नेकियां हैं, नेकियां भी नहीं लिखी जा रही हैं, गुनाह भी नहीं लिखे जा रहे हैं, तो क्यों करें और क्यों बचें? ठीक है, तो चले अगर आपसे पूछें इसका जवाब।
क्योंकि जो गुनाह करेंगे तो जैसे झूठ बोल दिया या धोखा देने की आदत पड़ेगी, तो वो जो है वो बुलूगत के बाद भी उसकी आदत रहेगी, तो आप बालिग होने के बाद भी वही सेम गुनाह रिपीट करेंगे।
अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? यही कहने चाह रहे थे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन्होंने फिर पहले उठाया था।
आदत एक आदत है और एक होता है एक गुना नहीं मतलब उसका असर होता है। जैसे पहले नजर जैसे माफ होती है तो इतना मेरा तो देखिए तो लेकिन उसका असर रहता है।
अच्छा, यहां भी इन्होंने लिखा कि पहले आदत बनती है फिर इबादत बनती है। अच्छा, इबादत, गुना कैसे इबादत बन जाता है? गुना की आदत बनती है तो वो इबादत कैसे बनेगा? लेकिन हाँ, आपकी बात समझ में आ गई। आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि तरबियत होती है, प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये उससे भी बेहतर, आप लोगों के जवाब से भी बेहतर जवाब है, तरबियत और प्रैक्टिस। क्यों? इसलिए कि आपने तो खाली गुना के साइड का मसला बताया ना, नेकियों का क्या करेंगे? नेकी करने की क्या जरूरत है जब लिखी नहीं जा रही? ठीक है, गुनाह से बच जाते हैं, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने की क्या जरूरत है? और इस्तगफार या दूसरे नेकी के काम करने की, खिदमत करने की अम्मी अब्बू की क्या जरूरत है? वो भी तो नहीं लिखे जा रहे। तो उसका जवाब क्या होगा? वो तो फिर वो भी एक्चुअली आदत के इसमें वो भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप सिर्फ गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, इस वजह से साजिद ने कहा। तो नेकी की भी तो आदत पड़ती है ना, खिदमत की भी तो आदत बनानी पड़ती है ना। ठीक है, अगर आप कहें कि नहीं, जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं करना शुरू करूंगा, तो फिर उस वक्त जो है वो आप कर नहीं सकेंगे, आपको आदत बनानी पड़ेगी। और बड़े होने के बाद आदतें नहीं बनती, आदतें तो बचपन में बनती हैं। ठीक है, जो बचपन में आदत ना बनी वो बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो बचपन में बन गई उसके बारे में क्या कहते हैं? कि बचपन की आदतें बचपन में भी नहीं जाती। ठीक है, 55 ईयर्स ओल्ड होने के बाद भी बचपन की आदतें नहीं जाती हैं। तो असल मामला जो है वो आदत ही का है, और ये इतना अहम है कि वी कैन नॉट डिले इट, कि जब बालिग होंगे, बड़े होंगे, तब आदत बनाना शुरू करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे टाइम कितना हो गया, बस 4 बजने वाला है, नमाज भी पढ़नी है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि अभी तो मैं जवान हूं सही है, तो अभी तो मैं अब्बू के साथ रहता हूं, तो अब्बू जो है ना, वो मुझे जो चीज चाहिए होती है वो ला के दे देते हैं, खाना पीना। ठीक है, और जो कपड़े हैं वो भी अब्बू खरीद के ला देते हैं, और जो है वो गाड़ी भी अब्बू की होती है, या तो मैं बैठ के चला जाता हूँ या अब्बू, या मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके चला जाता हूँ। ठीक है, तो अभी तो मुझे ना ना अपना खाना खुद अरेंज करने की जरूरत है, ना अपना जो है वो कपड़ा, ना अपनी गाड़ी, ना अपना घर। ठीक है, तो जब शादी होगी ना मेरी, ठीक है, और फिर एक बेगम साहिबा आएंगी आएंगी, तब जो है ना फिर मुझे कमाने की जरूरत भी पड़ेगी, तब मुझे जो है वो खाने की जरूरत भी पड़ेगी। फिर उसके बाद अब्बू कहेंगे अब तो मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, अब खुद कमाओ खुद खाओ, तो उसके बाद फिर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगा अपना। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा स्कूल, फिर मैं जाऊंगा कॉलेज, फिर मैं जाऊंगा यूनिवर्सिटी, फिर पढ़ लिख करके मैं जाऊंगा ना वो जॉब तलाश करूंगा, फिर जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद मैं कमाना शुरू करूंगा, और फिर उसके बाद अपने खुद भी खाऊंगा, बेगम साहिबों को भी खिलाऊंगा। क्या ख्याल है? ठीक है, सब मारेंगे आपको, पत्थर उठा उठा करके आपको सब मारेंगे। ठीक है, वो बचपन से तुम्हें पढ़ना है, तुमने ग्रेड 1 से एडमिशन लेना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी, अच्छा दीनी मदरसे जाने, तो वहां पे भी तुमने पूरा प्रोसेस करना है। शादी के बाद तो तुमने कमाना शुरू करना है, पढ़ना शुरू नहीं करना शादी के बाद, पढ़ना तो तुमने बचपन से शुरू करना है। ठीक है, मजे की बात यह है कि कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्दों को लगाई, तो उनको तो बचपन से पढ़ाते हैं कमाने के लिए, लेकिन जो घर बनाने की जिम्मेदारी औरतों को लगाई, उनको कहते हैं शादी के बाद सीखना घर कैसे बनाते हैं। शादी से पहले जो है वो कमाना सीख लो, पांव पे खड़ा होना सीख लो। ठीक है, और जो है वो दूसरे काम कर लो, और जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तुम जो है ना घर बनाना सीखना, और बच्चों को जो है ना फिर उसके बाद परवरिश करना और तरबियत देना, शादी के बाद सीख लेना। शादी से पहले साइंटिस्ट बन जाओ, शादी से पहले जो है वो इंजीनियर बन जाओ, शादी से पहले जो है लॉयर बन जाओ, शादी से पहले ये बन जाओ, शादी से पहले वो बन जाओ। भाई ठीक है, अगर लॉयर बनना है तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है? फिर जाके लॉ प्रैक्टिस करो, लॉ से कमाओ, खुद भी खाओ, किसी और को भी खिलाओ। राइट, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, डॉक्टरी के रास्ते के ऊपर कमाओ। ये शादी किधर से बीच में आ गई? फिर घर किधर से बीच में आ गया? औलाद किधर से बीच में आ गया? भाई ठीक है, अगर तुमने नहीं सीखना तो फिर मर्दों को भी इजाजत दो, भाई हम भी फिर शादी के बाद ही सीखेंगे। हम अभी, हमें क्रिकेट खेलने दो, हमें अभी फुटबॉल खेलने दो, हमें अभी सारे तमाशे करने दो, शादी करने के बाद जब जरूरत होगी देन वी विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। राइट, है ना भाई? मेंस राइट्स, हम भी जुलूस निकालेंगे, मेंस राइट्स, ठीक है, क्या मुसीबत बनाई हुई है, स्कूल जाओ, मदरसा जाओ, फलाना करो, फलाना निमकाना करो, शादी के बाद देखा जाएगा यार। ये खाली वेमेन्स राइट्स और मेंस राइट्स की क्या, ये तो जुल्म है यार मर्दों के ऊपर। सही है, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो ना वो बात ठीक है और ना जो है वो गुनाह और सवाब वाला वाली बात ठीक है। ये सारे काम बचपन में करने होते हैं, बुलूगत का इंतजार नहीं करना होता। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे भी सबको फायदा होगा। क्या कह रहे हैं
नमाज के लिए बोलेंगे कि साथ साथ में शुरू करवाने वाले बातों में आ भी करवाने
जी, नमाज का भी यही मामला है और बाकी सारे काम का भी यही मामला है। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग के लिए वी हैव मेड बिग अंडरग्राउंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग टू बिल्ड टॉलर बिल्डिंग, दो वी डोंट यूज फाउंडेशन एरिया बट टू मेक द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। जी माशाल्लाह, ठीक है, फाउंडेशन तो नीचे से बनाई जाती है, लेकिन रिहाइश फाउंडेशन में नहीं जाकर के की जाती, रिहाइश तो आपको बिल्डिंग के अंदर करनी होती है ना, लेकिन बिल्डिंग फाउंडेशन के बगैर बन नहीं सकती और ठहर नहीं सकती, इस वजह से फाउंडेशन जो है वो बचपन में करनी होती है। अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले नमाज पढ़ लेते हैं, इसके बाद पहला नाश्ता करते हैं।
दुआ
ओह, दुआ रहेगी। तो भाई कलमात भी पढ़ लिए, माशाल्लाह जबरदस्त, दुआ रहेगी। दुआ के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला से बस एक तार जोड़ लें, एक ताल्लुक बना लें, क्योंकि दुआ जो है वो अल्लाह से मांगने का ही नाम है। सुभान रब्बिल आल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں وافر حصہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی شدید محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کی محبت کے راستے میں جو بھی چیز رکاوٹ ہے، اے اللہ اس رکاوٹ کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دور فرما، اے اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے بندوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کے نیک بندوں کی، آپ کے انبیاء کی بات کرتے ہیں، اے اللہ آداب اور اخلاق کی بات کرتے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی، آپ کے صحابہ کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے اکابرین کے زندگی کے احوال پڑھے، اے اللہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا اس میں ہمارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں تھا، اے اللہ یہ صرف اور صرف آپ کا فضل ہے، اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ ہم نے کیا، اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اے اللہ ہمیں ایک ایسے مجلس کا حصہ بنا دیا جہاں پہ ایسی باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اے اللہ اس کا انتظام کرنے والے بھی آپ ہی کے ویسے ہی محتاج ہیں جس طرح سے کہ اس کے اندر سے فائدہ اٹھانے والے آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ نے اتنا فضل فرما دیا، اے اللہ آج ہی بھی فضل فرما کر کے اس کو ہم سب سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کے اساتذہ سے اس کو قبول فرما لیجئے، اس کے طلباء طالبات سے اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ وہ والدین جو کہ اپنے بچے بچیوں کو اس کلاس کے اندر لے کر آتے ہیں یا گھر میں آن لائن بٹھا کر کے سناتے ہیں، اے اللہ ان والدین سے اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کے لیے جو اپنا گھر پیش کرتے ہیں، اپنا وقت پیش کرتے ہیں، اپنی فکریں پیش کرتے ہیں، اے اللہ چائے پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے سوچ لگاتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے کسی قسم کا بھی تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان سب سے بھی اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے فضل کو ہمارے اوپر مکمل فرما دیجئے، اے اللہ تام فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کی صف میں دنیا میں بھی شامل فرما کے رکھیے اور آخرت میں بھی انہی کی صف میں ہم سب کو کھڑا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا امتی بننا چاہیے اے اللہ ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی اور مدد کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی गमों से भी निजात अता फरमा, ए अल्लाह कब्र की के गमों से भी हमारी हमें निजात अता फरमा, ए अल्लाह आखिरत की फिक्रों और गम से भी हम सबको निजात अता फरमा, ए अल्लाह हम सबको यहाँ पर दीन की नस्बत से आपने जुड़ने की जमा होने की तौफीक अता फरमाई, चाहे ऑन साइट हो चाहे ऑनलाइन हो, ए अल्लाह नस्बत तो सबके लिए एक ही है, ए अल्लाह इस नस्बत से जुड़ने वालों के लिए आपके हबीब अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन खुशखबरी सुनाई कि कयामत के दिन भी इसी नस्बत से वो जुड़े होंगे, इसी नस्बत से वो इकट्ठे होंगे और उनके ऊपर आपके अर्श का साया होगा। ए अल्लाह इस दुनिया के अंदर जो भी हमें ये मिला, ए अल्लाह महज आपकी तौफीक से मिला, ए अल्लाह महज आपकी फजलो करम से मिला, ए अल्लाह आपने हमारा ताल्लुक अपने उन नेक बंदों से करवाया जिन्होंने हमें अपने पीछे चलाने की बजाय शरीयत और सुन्नत के रास्ते के ऊपर चलाया। ए अल्लाह वो रास्ता जो कि आपकी रजा तक लेके जाता है, जो आपकी वसल तक लेकर के जाता है, आपकी मुलाकात और दोस्ती तक लेके जाता है, ए अल्लाह आपने हमारे ऊपर फजल व करम फरमा दिया। अब ए अल्लाह हमें इसी के ऊपर मौत भी अता फरमाइएगा, ए अल्लाह अपनी रजा के ऊपर ही मौत अता फरमाइएगा, ए अल्लाह बुरे खात्मे से हम सब की हिफाजत फरमा के ए अल्लाह अपनी मकबूल रास्ते की मौत अता फरमाइएगा। ए अल्लाह हम आपसे दोस्ती के ताल्लुक के साथ मिलना चाहते हैं, ए अल्लाह आपके साथ रजा के साथ हम मुलाकात करना चाहते हैं, ए अल्लाह सारा का सारा हुस्न तो आप ही की जात में है, ए अल्लाह सारा का सारा कमाल तो आप ही की जात में है, ए अल्लाह आप ही असल हैं और बाकी सब का सब अबस है। ए अल्लाह हमें अपनी जात से, हमें ए अल्लाह अपने वसल से, अपनी मोहब्बत से कभी भी महरूम ना होने दीजिएगा। ए अल्लाह हमारी किसी भी गलती को ए अल्लाह इसका सबब बना करके अपने से दूर ना कर दीजिएगा। ए अल्लाह हमारी कोई भी छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, ए अल्लाह अपनी रहमत को सामने रख के ए अल्लाह उसको माफ़ फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह गलतियों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह हम आपसे दूर हो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ए अल्लाह हम आपसे दूर हो जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ए अल्लाह हमारा बस नहीं चलता कि हम किस तरीके से इस बात को श्योर कर लें कि बस आप ही के साथ रहना है और आप ही को राजी करना है और आप ही के साथ आके मिल जाना है। ए अल्लाह बस आप मेहरबानी फरमा करके इसकी हमें कोई गारंटी अता फरमा दीजिए, ए अल्लाह इसकी कोई अश्योरेंस हमें अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। ए अल्लाह दुनिया की छोटी छोटी जरूरतें ए अल्लाह हमारे नजदीक बड़ी हैं, आपके नजदीक तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ए अल्लाह आप तो सारी दुनिया और सारे आसमानों के खजानों के मालिक हैं, तमाम खजानों की कुंजियां आपके पास हैं, तमाम खजानों का इख्तियार आपके पास है। ए अल्लाह आपके लिए अपने बंदों की इन छोटी छोटी जरूरियात को पूरा कर देना क्या मुश्किल काम है, लेकिन ए अल्लाह हम आपका बनना चाहते हैं, ए अल्लाह इज्जत की जिंदगी दुनिया में भी गुजारना चाहते हैं, ए अल्लाह आखिरत में भी इज्जत के साथ आके आपसे मिलना चाहते हैं। ए अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे आज आपके सामने हाथ खड़ा करके ए अल्लाह दुआ मांग रहे हैं, हमने अपने हजरत से सुना था कि जब छोटे बच्चे अपने हाथ उठा के आपसे दुआ मांगते हैं तो आप उनकी दुआ को रद्द नहीं करते। हजरत तो बार बार फरमाया करते थे कि जब भी कोई मुश्किल आती है हम मदरसे के छोटे बच्चों से दुआ करवाते हैं और आप उसमें इस मुसीबत को टाल देते हैं। ए अल्लाह छोटे बच्चे भी आपके सामने हाथ उठाए हुए हैं, ए अल्लाह सफेद रेश बुजुर्ग भी आपके सामने हाथ उठाए हुए हैं, ए अल्लाह नौजवान भी आपके सामने हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह इतने सारे हाथों को रद्द करना यकीनन आपकी शान के खिलाफ है। ए अल्लाह अपनी शान से अता फरमा दीजिए, ए अल्लाह अपनी शान के बकदर अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी हरकतों को ना देखिए, ए अल्लाह हमारी गुनाहों को ना देखिए, हमारी कमजोरियों को ना देखिए, बल्कि अपनी शान के बकदर ए अल्लाह हमारे लिए अच्छे फैसले फरमा दीजिए। ए अल्लाह आप ही के हबीब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि आप फरमाते हैं कि अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। ए अल्लाह आप दिलों का हाल जानते हैं, जुबान से हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन ऐ अल्लाह अपने दिल से आपके साथ झूठ नहीं बोल सकते। ऐ अल्लाह आप जानते हैं कि हमारा आपके साथ क्या गुमान है। ऐ अल्लाह इस गुमान को भी हमने खुद नहीं पैदा किया। ऐ अल्लाह ये भी खालिसतन आप ही का फजल है, आप ही का एहसान है। ऐ अल्लाह कि हमें आपने ऐसा गुमान अता फरमा दिया। ऐ अल्लाह हम तो इस काबिल न थे। ऐ अल्लाह हम तो इस काबिल न थे। ऐ अल्लाह आपका फजल है, अब इस गुमान को पूरा भी फरमा दीजिए, इस गुमान के मुताबिक फैसले भी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक भी तो आप ही ने अता फरमाई। ऐ अल्लाह दुआ की कबूलियत भी आप ही अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह यहाँ से उठने से पहले और अपने अपने घरों में जो बैठे हैं सुन रहे हैं आमीन कह रहे हैं और जो किसी वजह से शामिल ना भी हो सके लेकिन दुआओं के लिए कहते हैं, ऐ अल्लाह उन सब से इन दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, सबके हक में कबूल फरमा दीजिए, अपने मकबूल बंदे बंदियों में हम सबको शामिल फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मदियु व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
Recording stopped.